ओम शांति। अपने देश का हालचाल देखने के लिए एक राजा राज्य के गांव गांव में घूम रहा था और घूमते घूमते जब एक छोटे से गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कोट का जो बटन है वो निकल चुका है, लटक रहा है। राजा मंत्री से कहता है कि देखो, इस गांव में कोई दर्जी है जो ये बटन सी दे। उस गांव में एक ही दर्जी था, वो सामने आता है। राजा उससे कहते हैं कि क्या तुम ये सी दोगे? वो कहता है क्यों नहीं, और बहुत खुशी खुशी से वो बटन टाप देता है। और फिर राजा उससे पूछते हैं कितने दाम हुए? वो कहता है इतना छोटा सा काम। मन में सोचता है बटन भी राजा का, मैंने तो केवल धागा लगाया है, इसके क्या दाम। राजा कहता है नहीं, फिर भी बताओ। वो सोचने लगता है कितना मांगू। सोचता है 2 रुपए मांगता हूं, पर फिर सोचता है बार बार राजा थोड़ी गांव में आता है, क्यों ना ज्यादा मांग लू, 100 रुपए, 200 रुपए। फिर सोचता है 200 मांग लेता हूं क्योंकि राजा है आखिर। और फिर सोचता है कि राजा ये भी तो सोच सकता है कि मुझसे 200 लेता है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, इसलिए फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और फिर राजा से कहता है कि आपको जो मर्जी चाहे, जितना आप देना चाहो अपनी इच्छा से दे दीजिए। और अब तो बात राजा पर आ गई, उसकी अपनी इज्जत प्रेस्टीज का सवाल था, और वो राजा ठहरा। और राजा ने आदेश दिया मंत्री को कि इस दर्जी को इनाम में 2 गांव दिए जाए। कहा तो वो दर्जी सोच रहा था 2 रुपए मांग लू, क्योंकि सब कुछ तो राजा का ही था, मेरा तो केवल धागा था, बटन भी उसका, कोट भी उसका। कहा तो वो 2 रुपए और 200 रुपए की बात सोच रहा था, और कहा तो देने वाला राजा था जिसने वो दिया जो उसने कभी, उस दर्जी ने कभी सोचा भी ना था, अप्रत्याशित 2 गांव दे दिए। अगर संसार का एक राजा 2 गांव दे सकता है, यदि उसकी थोड़ी सी सेवा की जाए, और यदि हम उस भगवान की सेवा करते जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, तो 2 गांव नहीं, वो 2 युग की बादशाही देगा। परंतु देगा तब जब तुम क्या करोगे, यथा शक्ति नहीं संपूर्ण, आधा अधूरा नहीं पूर्ण सहयोग दोगे। तो बाबा ने आज कौन सा चार्ट चेक किया, कौन सा चार्ट चेक किया? बाप दादा आज सहयोग का चार्ट चेक किया, किसने कितना सहयोग दिया है। और हमें भी कहा कि अपना भी चार्ट चेक करो। कौन सा चार्ट चेक करो? कि तन से, मन से, धन से, समय से कितना मैंने सहयोग दिया। बाबा ने कहा इस संसार की तुम सबसे अधिक भाग्यवान हो, तुम आए हो, तुम्हारे पांव इस धरती पर नहीं है। तीन कारण बताए इसके, कौन से तीन कारण बताए? तुम्हारे पांव इस समय धरती पर नहीं है। गीत है ना, क्या तुमने देखा है मुझे उड़ते हुए? आजकल पांव मेरे जमीन पर नहीं है, आंखें जमीन पर नहीं है, पर लगी आंखों को तुमने देखा है उड़ते हुए। सबसे पहला कारण तो यह है क्योंकि तुम इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्माएं हो, और भाग्यवान होने के कारण तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। खुशी इतनी कि बात मत पूछो। इसलिए कहा जाता है कि खुशी इतनी है इसलिए तो इसके पांव जमीन पर नहीं रहते। तो सबसे पहला कारण बताया क्योंकि तुम कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं हो, क्योंकि तुम हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो जरूर है। बाप तुम में बिजी हो और तुम बाप में बिजी हो, बाप का बिजनेस ही बच्चे है। एक सेकंड में बाप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? एक सेकंड में सब कितनी हजारों करोड़ों आत्माओं को राशि कर सकता है। तो सबसे पहला कारण खुशी बहुत ज्यादा है इसलिए पांव जमीन पर नहीं है। तुम भाग्यवान आत्माएं हो, लंदन ग्रुप से मुलाकात। दूसरा कारण क्योंकि तुम फरिश्ते हो और फरिश्ते आसमानों पर रहते हैं, जमीन पर नहीं, मिट्टी पर पैर नहीं रखते। क्योंकि जमीन अर्थात देहभान, देह अभिमान, वो देह और देह के चिंतन से परे रहते, उनका आनंद संकल्प में है, प्यूरिटी में है, परमात्म प्रेम में है, इस संसार से परे है। वो इस धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर चुके हैं, इसलिए धरती उन्हें खींचती नहीं, शरीर उन्हें खींचता नहीं, देह के आकर्षण से वो चेतना परे रहती है। तीसरा कारण सिकिलते हो इसलिए झूले में हो, और जो झूले में है वो मिट्टी में पांव नहीं रखते, शरीर मिट्टी है। सिकिलते अर्थात साफ, सिकिलते अर्थात सच्ची दिल। तो हमारे पांव इस धरती पर नहीं है, इसके तीन कारण बाबा ने सुनाए। हम भाग्यवान हैं, कोटों में कोई कुछ तो कुछ विशेषता है इसलिए उसने चुना है। दूसरा कारण क्योंकि हम फरिश्ते हैं, और तीसरा कारण सिकिलते लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, भटक गए थे, खो गए थे, फिर से मिल गए। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? बाप कौन है? विश्व कल्याणकारी है। किसको देख रहा है? सहयोगी बच्चों को देख रहा है, उनको देख रहा है जिनकी एक ही लगन है, जिनका एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और जिनके अंदर उमंग उत्साह है, एक ही इच्छा है। कौन सी? भगवान को प्रत्यक्ष करने की लगन है, बस एक ही बर्निंग डिजायर, एक ही इच्छा, एक ही लगन, एक ही उमंग, एक ही श्रेष्ठ संकल्प कि बाप प्रत्यक्ष हो। और बाप का प्यार सेवा से है इसलिए बच्चों का प्यार भी सेवा से है। ये देखकर बाप को बहुत खुशी होती है, और यही क्या है? स्नेह का सबूत है, प्रमाण है, एविडेंस है, प्रूफ है। तो बाबा ने देखा कि कैसे पाप के खाते से पुण्य के खाते जमा कर रहे हैं, कैसे वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ बना रहे हैं। चार प्रकार के खाते देखे। पहला, तन कितना सफल किया है। दूसरा, मन। तीसरा, धन। और चौथा, समय। सबसे पहला है तन, शरीर। संगम युग आधारशिला है सारे कल्प की। संगम युग नींव है कल्प की इमारत की। इसके लिए यहां जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम, उसका प्रभाव, उसकी प्रतिध्वनि सारे कल्प में गूंजेगी। सबसे पहले शरीर। शरीर के साथ क्या करना है? शरीर के संबंध में क्या करना है? सभी ब्राह्मण आत्माओं को तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, दूसरा काम है जांच, और तीसरा काम है बीमारी आने पर। सबसे पहला काम है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ऐसी दिनचर्या हो, ऐसा खान पान हो कि जिसमें बीमार ही ना पड़े, अर्थात इस शरीर को निरोग रखना, इस शरीर को निरोग रखने का पुरुषार्थ करना। ये सबसे पहला काम है प्रिवेंशन। शरीर के साथ चार चीजों में पहली चीज है स्वास्थ्य के संबंध में, उसमें ये तीन चीजें। पहला, बचाव, प्रिवेंशन, रोकथाम, कि बीमार हो ही ना। जिन्होंने शरीर को चलाना नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएंगे? बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। जिन्होंने शरीर को ही नहीं चलाना सीखा, जो बच्चे अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी तू योगी आत्मा नहीं कहते। सबसे पहले तो दिनचर्या ही ऐसी हो कि जिसमें शरीर निरोग रहे। भोजन के रस तपस्या का अपहरण न कर ले। संयम की शुरुआत ही शरीर से होती है और शरीर में भी भोजन से। तप, सबसे पहला तप तो शरीर का ही तप है। संकल्प शक्ति जमा ही भोजन के संयम से होती है, बाकी सब संयम बाद में। संकल्प शक्ति, संयम की शक्ति अंदर क्या जा रहा है उससे शुरुआत है। तो दिनचर्या ऐसी ना हो, खान पान ऐसा ना हो कि जिससे शरीर बार बार बीमार पड़ते रहे। और भूख का संबंध शरीर और पेट से कम मस्तिष्क से जाता है। संकल्प, विल पावर। तो सबसे पहले तो शरीर को ठीक रखना, खान पान, व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, जो भी जिसको पसंद है, या जिस भी रीति से शरीर को ठीक रखा जाए ठीक रखे। क्योंकि जब शरीर बीमार पड़ता है तो तपस्या समाप्त हो जाती है, व्यर्थ चलने लगता है, शरीर खींचने लगता है, दर्द होने लगता है, अमृत वेला छूटता है, मुरली पढ़ना छूट जाता है। और जब अमृत वेला और मुरली ही छूट गई तब स्थिति पर कटे, पर कटी चिड़िया की जैसे नीचे गिर के गिर जाती है। इसलिए सबसे पहला काम शरीर के साथ जो करना है वो है निरोग, स्वास्थ्य। दूसरा काम शरीर से स्वास्थ्य में, पहला प्रिवेंशन, दूसरा चेकअप, जांच, साल में एक बार जांच होती रहे। ऐसा ना हो कई मरीज हमारे पास आते हैं जिनको उदासी है, दुखी है, और वो समझते हैं ये उदासी किसी टेंशन की वजह से है, वो समझते हैं ये उदासी किसी स्ट्रेस के वजह से है, वो समझते हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत कई लोगों से इसके वजह से, परंतु कारण कभी कुछ और निकल जाता है, अनडायग्नोज थायराइड की बीमारी या और कोई बीमारी, किसी विटामिन की कमी या और कुछ, जिस वजह से वो डिप्रेशन था और वो सोचता था, वो सोचती थी कि ये स्ट्रेस की वजह से। तो साल में एक बार जांच। तीसरा, बीमारी आने पर क्या करना है। बाबा ने कहा बुद्धि सालिम रहे, अगर शरीर कमजोर हो, रोगी हो, फिर भी मनसा सेवा तो कर ही सकते हो। ऐसी मनसा सेवा कि जिसमें चेहरे से और नैनों से कौन सी शक्ति, अतीन्द्रिय सुख की और शांति की शक्ति दिखाई दे, आंखों से, नैनों से। डॉक्टर क्या कहे, ये तो वंडरफुल पेशेंट है, बीमार है परंतु बीमारी के प्रभाव से परे। पर उल्टा कई होता, कई बार उल्टा है, डॉक्टर को देखते ही बीमारियां बढ़ जाती है, जो जो है नहीं वो भी याद आने लगता है। तो शरीर में स्वास्थ्य पहला, और स्वास्थ्य में हर एक को ये तीन काम करने हैं। सबसे पहले दिनचर्या, खान पान, दूसरा चेकअप, और तीसरा अगर बीमारी आ गई तो वाह व्याधि वाह। उदास नहीं हो जाना है, दुखी नहीं हो जाना है, इरिटेट नहीं हो जाना है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं बन जाना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूं, ये सब लोग इतने स्वस्थ हैं, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, और तो सबसे बड़ी बात इतने हम बीमार हैं पर रिपोर्ट्स में कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसी उदासी छा जाती है जब डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है पर हम बीमार तो बहुत है। शायद बीमारी शरीर में नहीं कहीं और है। अगर बीमारी आ भी गई अब क्या करना है। सबसे पहले तो स्वीकार करो, ठीक है शरीर का भी हिसाब है और बीमारी आएगी, हम कितना भी ध्यान रखे, जो कुछ करे, फिर भी बीमारी आएगी। क्यों? क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है। जो भोजन हम खा रहे पता नहीं उसमें कौन से कीटनाशक मिले हुए हैं, और कुछ बीमारियां दूसरों से आती है, एक की दूसरे को, कुछ बीमारियां जेनेटिक है। कोई कितना भी योगी हो फिर भी वर्तमान कलयुग में फिर भी बीमारी तो आएगी, हिसाब किताब है बहुत सारे। अगर बीमारी आ भी जाए तो पहले स्वीकार, दूसरा उसे हिसाब किताब समझना। आज की मुरली में बहुत जबरदस्त वरदान है। विघ्नों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया बाबा ने। विघ्नों को क्या समझो, एक उन्नति की सीढ़ी और दूसरा अनुभव की उन्नति, नया शब्द है। क्या समझो, विघ्न क्या कर रहे हैं, अनुभव की उन्नति कर रहे हैं और उन्नति की सीढ़ी। हमेशा के लिए दो शब्द बुद्धि में बिठा देना, बड़े पावरफुल शब्द है। विघ्न आया अर्थात क्या होने वाला है, अब अनुभव बढ़ने वाला है, वाओ आहा, बिना इसके तो अनुभव कैसे बढ़ता, कुछ नहीं। अनुभव की उन्नति और उन्नति की सीढ़ी, ये दो काम करते हैं विघ्न। तो बीमारी आ जाए स्वीकार, बीमारी आ जाए कंप्लेंट नहीं, बीमारी आ जाए हिसाब किताब, बीमारी आ जाए फिर भी खुश, बीमारी आ जाए मनसा सेवा करो, बीमारी आ जाए बुद्धि सालिम रहे, बीमारी आ जाए तो विश्व को सकाश दो, बीमारी आ जाए तो हिसाब किताब समझो, बीमारी आ जाए फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग, बीमार पड़े हैं अस्पताल में बाजू के पेशेंट की सेवा करो, बीमारी आ जाए नर्सेस डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाइब्रेशंस वायुमंडल वहां की सेवा करो, बीमारी आ जाए अपनी स्थिति से मिलने वाली आत्माओं की सेवा करो, अपनी पूरी कहानी हरेक के सामने चालू नहीं कर देना है कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि हरेक आके पूछता है क्या हुआ, फिर हम चालू करते मैं ऐसा जा रहा था फिर ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ फिर वो, कहानी पूरी हुई वो गया अब दूसरा आया क्या हुआ, फिर से चालू इतनी बार रिपीट कर करके एक्सीडेंट हो गया कैसे हुआ, मैं फिर वहां से जा रहा था वहां से गाड़ी आई फिर एक्सीडेंट हुआ फिर इधर आया फिर ये फ्रैक्चर हुआ फिर वहां अब यहां हूं अभी दर्द बहुत है, एक फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ, कितना माइंड में रिवीजन हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा हरेक ये वाला तो जरूर खाके देखना नुस्खा, हरेक यहाँ डॉक्टर बैठा है, हरेक के पास कोई ना कोई इलाज तो अपने अनुभव से तो है ही, परंतु रिपीट कितनी बार कर रहे हैं हम माइंड में, निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है फिर किसी को दोषी ठहरा रहे उसके वजह से ऐसा हुआ, इसने ठीक से डायग्नोस नहीं किया, किसी ना किसी को व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे मन में, निगेटिव एनर्जी एक बार नहीं कई बार क्रिएट हो रही है, वही रिपीटेशन हो रहा है, तो बार बार बीमारी का रिपीट नहीं करते रहना है, अपनी बहुत दर्द है ऐसा है वैसा है हर एक को सुनाते नहीं बैठना है, बीमारी आ गई ठीक है हमने दादियों को देखा इतना दर्द इतनी पीड़ा, परंतु जैसे शरीर से डिटैच्ड शांतामणि दादी मनोरिंद्रा दादी जानकी दादी कितने सारी दादियां शरीर से कितने डिटैच्ड है, तो बीमारी की स्थिति में भी स्थिति शक्तिशाली हो पावरफुल हो, अगर पढ़ सके तो मुरलियों का अध्ययन हॉस्पिटल में बैठकर भी होता रहे और कमरे में बैठकर भी या कुछ क्लासेस सुनते रहो, परंतु क्योंकि बीमारी की हालत में विकारों की प्रवेशता मन में बहुत तेजी से होती है, क्योंकि मन उस समय व्यर्थ संकल्पों में होता है ज्ञान योग से रिक्त होता है, तो व्यर्थ प्रवेश करता है व्यर्थ के पीछे विकार प्रवेश करते इतने सूक्ष्म कि उसे भी नहीं पता चलता, इसके लिए बीमार होते ही अपने आप को बिजी कर देना है चिंतन में मनन में पढ़ाई में, अब तक जो सुना हुआ ज्ञान है उसको रिवाइज करने में मन ही मन, और कोई व्यर्थ संकल्प नहीं तो सेवा खींचती, अब 2 महीना बिस्तर पर बैठना है फ्रैक्चर हो गया है बेचैन हो जाती है आत्मा कि मुझे सेवा करनी है, सेवा क्यों करनी है, शांत बैठो और मनसा सेवा करो, इसको भी स्वीकार करो ये भी हिसाब किताब है और ये होगा, अनुभव की उन्नति और उन्नति की सीढ़ी ये पहला काम शरीर के साथ, दूसरा काम ये शरीर भोग के लिए नहीं है तपस्या के लिए है, इस शरीर में बैठकर महान तपस्वी बनना है संयम को धारण करना है, हमारी दिनचर्या और भोगियों की दिनचर्या एक सी ना हो, भोग में तो सारा संसार डूबा है परंतु भोग बड़े खोटे हैं, दोष है उसमें, पहला दोष तो एडिक्टिव है, एक बार भोगो तो बार बार करने की इच्छा चखने की इच्छा भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरा काल्पनिक है सारे भोग, तीसरा भ्रामक है और चौथा धोखेबाज है, दिखाते हैं कि इसमें बहुत सुख है, परंतु सुख अल्पकालीन है, छोटे से सुख के साथ बड़ा दुख छिपा हुआ है। तेन तत्वेन भुगनिता, इस संसार की वस्तुओं का उपभोग, इन संसार की वस्तुओं का त्याग करके करो। तप, देह मिला है किस लिए? तप के लिए। इस शरीर में बैठकर तपस्वी बनना है, इस शरीर को तपाना है। अंग अंग क्रिमिनल है, अंग अंग सुगंधित हो जाए, अंग अंग शिथिल हो जाए, सारी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाए, वो जो विकारों की उत्तेजना, एक्साइटमेंट, एजिटेशन इस शरीर में है, जन जन का विष इस शरीर में भरा है भोग का, तपाना होगा, चलाना होगा। ये दूसरा काम। और तीसरा काम शरीर के साथ जो करना है वो इस शरीर को सेवा में लगाना है। ये है शरीर को सफल करना। जितना जितना सेवा में शरीर लगाओगे, शरीर निरोगी होगा, 21 जन्म तक तुम्हें निरोगी शरीर प्राप्त होगा। ये है शरीर को सफल करना। जो यहां सफल करेंगे अपने आप उनको मिलते रहेगा, इवन द्वापर से भी विकृत बीमार शरीर नहीं, स्वस्थ शरीर मिलेगा। तो उस स्वस्थ शरीर का आधार है वर्तमान में स्वस्थ रहना, निरोग रहना, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा। ये शरीर को जिस भी तरह की आदत डालो उसे लग जाती है। कुछ भी आदत डालो, कुछ भी खाने की आदत डालो, वो अपने आप धीरे धीरे नेचुरल हो जाती है। और जितना हो सके शरीर को प्रकृति के समीप ले जाना है। शरीर में तत्व है, पांच तत्व है, सबसे ऊंचा और सबसे हल्का है आकाश तत्व, फिर है वायु तत्व, फिर है अग्नि, फिर है जल और फिर है धरती। ये पांच। तो योगी का भोजन भी ऊपर से नीचे तक, सबसे पहले आकाश अर्थात उपवास, फिर है वायु अर्थात प्राकृतिक जो चीजें हैं, जिसमें फल फूल, गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो ये मुझे स्वीकार कराता है मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। पत्र पुष्प फल और जल, उसके बाद में फिर अग्नि तत्व अपक्व, उसके बाद में है फिर जल तत्व और थोड़ा भारी, और फिर धरती जिसमें अनाज सब कुछ आएगा। जिसको आकाश से जुड़ना है और आकाश में रहना है उसका भोजन आकाश से हल्का हो, नहीं तो शरीर खींचेगा, शरीर के तत्व खींचेंगे। जो प्रकृति के जितने समीप है उतना शरीरी है, जो प्रकृति से जितना दूर धरती की तरफ है जहां पर अनाज उगता है वो उतना ही शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर को सफल करना पहला। दूसरा है मन। मन का क्या करेंगे? मन का क्या करेंगे? मन को शक्तिशाली बनाना, मन को स्थिर करना, मन को शुभ भावना शुभकामना से भरना, मन से संकल्प शक्ति से सेवा करना, एक ही स्थान पर बैठकर विश्व में वाइब्रेशंस फैलाना, ये मन का काम है। मन को सफल करना, मन को निगेटिव ना होने देना, मन को वेस्ट में ना जाने देना, अपने ही मन को सशक्त बनाना, पावरफुल बनाना, संयमित बनाना, तपस्वी बनाना। जीवन संयम का हो, भोगी का नहीं, जिसे बस भोग का ही चिंतन चलता रहता है। चिंतन चले कैसी तपस्या करूं, चिंतन चले इस तपस्या को आगे कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं जिससे संयम बढ़ जाए। तो मन में शुभ भावना, शुभ कामना, शांत हो, शक्तिशाली हो। यादगार में क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो चित्र है उससे क्या अनुभव होगा आत्माओं को द्वापर में, शांति और शक्ति का अनुभव होगा तुम्हारे चित्र से, चैतन्य से। तो अभी मन को स्थिर, एकाग्र, तपस्वी, शांत, शक्तिशाली, शुभ भावना, शुभ कामना और शक्ति से भर देना। ये काम है मन को सफल करने का। तीसरा है धन। धन को क्या करेंगे, धन को क्या करेंगे? अमेरिका में एक छोटा सा बच्चा था, 20वीं शताब्दी की शुरुआत, घर घर में जाके कुछ बेचता था। एक बार बेचते बेचते, गरीब था बेचारा, इतनी भूख लगी थी, चक्कर आ रहे थे, एक घर पर ठक ठक करता है, दरवाजा खुलता है, एक महिला आती है, उसे इच्छा होती है कि इसको कुछ कहूं कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, परंतु इच्छा, हिम्मत नहीं होती है, कैसे बोलूं, क्योंकि वो तो बेचने वाला है। फिर भी कहता है कि कुछ मुझे पीने के लिए दो। तो वो महिला उसे अंदर बुलाती है और उसे एक ग्लास दूध देती है, और जैसे ही वो पीता है जैसे नवीन चेतना उसमें आ जाती है, बहुत धन्यवाद देता है मन से और निकल जाता है। बहुत बहुत साल गुजर जाते हैं, वो महिला बूढ़ी है, बीमार हो गई है, कैंसर का पता चला है और किसी अस्पताल में एडमिट होती है, और वहां का जो मुख्य डॉक्टर है, जब वो देखता है ये कौन सी महिला है और किस गांव से है और इसका ये नाम है, तुरंत जाता है, उसकी फाइल देखता है, उसके रिपोर्ट्स करवाता है, सब कुछ कराता है, पता चलता है ये अफोर्डिंग नहीं है, गरीब है, सब कुछ उसका करता है, ऑपरेशन होता है, और लास्ट में जब बिल की बारी आती है, वो बिल उस महिला के पास पहुंचता है, उसे तो लगता है कि इतना बिल मैं कैसे दे पाऊंगी, वहां पर लिखा रहता है पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये बच्चा था हॉवर्ड केली, डॉक्टर हॉवर्ड केली, गायनेकोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश करने वाला। 1900 जब शुरुआत हुई मेडिसिन की, हॉपकिन इंस्टीट्यूट, मैरीलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडिंग फादर गायनेकोलॉजी का, ये उस व्यक्ति की कहानी है कि जो मर रहा था और उस महिला ने उसे दूध दे दिया, और आज उसने उसका सब कुछ उसने पहचान लिया, ये तो वही है। तो हम थोड़ा सा देते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। बाबा ने कहा यहां धन लगाओ, यज्ञ में सफल करो, तो क्या होगा, तुमको कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, भिखारी नहीं बनोगे, संपन्न रहोगे, दाल रोटी मिलती रहेगी। जन्म ही ऐसे घर में होगा जो संपन्न है द्वापर से भी। सिल्वर स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन माउथ, ऐसे घर में जन्म होगा, संपन्न धनाढ्य घर में जन्म होगा द्वापर से, कभी ऐसी गरीबी की हालत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सफल किया है। धन छूटता नहीं है, पर जल्दी पकड़, मुद्रा राक्षस की बड़ी जबरदस्त है, मुद्रा राक्षस पकड़े गए, पकड़ गए, ऑक्टोपस ग्रिप। बाबा ने कहा इस भंडारे में डाल दो तो बाप सेवा करेगा, बाप सेवा में लगाएगा, तुम कभी भिखारी नहीं होंगे, सदा संपन्न रहोगे। तो यहां कुछ दो तो इतना मिल जाता है, यहां पर इतना और उतने का हिसाब नहीं है, यहां पर हिसाब कौन सा है, एक का पदम गुना। ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस अब लो, बाद में तो सिल्वर चांस होगा। ये यथाशक्ति नहीं, यहां पर संपूर्ण, अधूरा नहीं, अधूरा लोगे तो चंद्रवंश, अधूरा लोगे तो क्षत्रिय, संपूर्ण लो, समग्र समर्पण हो, संपूर्ण समर्पण। धन, उसके बाद में चौथा समय। धन में और एक चीज, धन को फिजूल खर्च न करना, मनी मैनेजमेंट क्या होती है उसको सीखना है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। उसके बाद में चौथा समय, समय को क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। समय को सफल करो तो वन 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 सतयुग, सतो प्रधान युग में आएंगे, शुरुआत में आएंगे किसके साथ, कृष्ण के साथ। क्या करेंगे क्या करेंगे जो करना है वो मन में सोच के रखो क्या करना है, तो उस सृष्टि के अनादि काल में हम अवतरित होंगे। और सतयुग की दो बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा है पर दो विशेष है, एक तो संपूर्ण प्योरिटी और दूसरा प्रकृति। जब वर्तमान में ही आबू की प्रकृति देखो, वातावरण निसर्ग कितना सुंदर, हरियाली चारों ओर, जब यहां ही इतना स्वर्ग सा सुंदर है तो वो स्वर्ग कैसा होगा, कैसा आकर्षण होगा उस प्रकृति में। और वो सबसे पहला फुल चार्ज बैटरी 100% सृष्टि की, तब प्रकृति में कैसा सौंदर्य, कैसा आकर्षण होगा, कैसी प्यूरिटी होगी आत्माओं में। तो समय को सफल करना है, भोले भंडार आप है, जितना लेना चाहो ले सकते हो, गोल्डन चांस है तुमको ये। और बाबा ने ये चार्ट देखा, देखो अपने आप को कि मैंने कितना सफल किया है, आईने में देखो, किस आईने में, किस आईने में कौन सा आईना दिया है, ज्ञान का आईना, दर्पण, सेल्फ चेकिंग। और ये रोज देखना है, आज शरीर का मैंने क्या किया, भोग में डुबाया या तपस्या में, शरीर से तपस्या टपक रही है या स्वाद। मन का मैंने क्या किया, व्यर्थ में चलाया, व्यर्थ में लेके गया, इसके उसके बारे में सोचते रहा, कंप्लेंट से भरा हुआ है, रिवेंज, बदले का कोई भाव है, घृणा का कोई भाव है, नफरत है किसी के लिए, क्या था, शक्तिशाली था या कमजोर था, उदास था, रो रहा था। लास्ट संडे की मुरली में कहा बाबा ने, जो शब्द तुम बोलोगे वो शास्त्र बनेंगे, तुम्हारे कर्म चरित्र बनेंगे, तुम जो स्मृति करोगे वो तुम्हारी स्मृति दुआ बनेगी, और तुम्हारी शुभ भावना, शुभ कामना दुआ, और तुम्हारी स्मृति सिमरन, सिमरन बनेगी। ये चार चीजें होगी। तन को सफल, मन को सफल, धन को सफल और समय को सफल। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट को सीखना है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले तो सुबह सुबह अपनी दिनचर्या को सेट करना है, टाइम टेबल बना के रखना है। अमृत वेला पूरा हुआ उसके बाद लिखना है आज क्या क्या करना है, एक शॉर्ट टाइम टेबल। फिर होता है टाइम बॉक्सिंग, टाइम बॉक्सिंग अर्थात 9 से 10 क्या करना है, 10 से 12 क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है, 8 से 6 क्या करना है, इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। फिर है टाइम बफरिंग, दो टाइम जो रखे उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना। भोजन का टाइम हमने रखा है जैसे 1 और 1.30 के बीच, और 1 बजे तक और कुछ है तो वहां पे थोड़ा सा गैप रखना, शायद चलने जाने के लिए लगेगा, उसको कहते हैं टाइम बफरिंग। फिर है प्रायोरिटाइज, कौन सा काम आज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आज किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको घुमाना है, कुछ टोली लेनी है, कुछ और करना है, प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता, वरीयता, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है आज उसको ऊपर रखना है, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट उसको सबसे नीचे रखना है। कमरा ठीक करना है, वो बाद में भी किया जा सकता है, पहले दूसरे महत्वपूर्ण काम है, परंतु प्रायोरिटाइज। उसके बाद में अचानक के लिए भी टाइम निकाल के रखना है, अचानक भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में घड़ी देखते रहना, उसके बाद में कमरे में कैलेंडर हो, नहीं तो यही खबर नहीं कौन सा दिन है। एक विदेशी आया था उस दिन, उसकी फ्लाइट थी और वो दूसरे दिन जाके पहुंची उधर, पता चला फ्लाइट तो कल चली गई, टिकट कल का था, खबर ही नहीं, तपस्या में इतनी मगन कि फ्लाइट चली गई। तो थोड़ा कैलेंडर सामने हो, घड़ी टेबल के पास हो जहां हम बैठे हैं, ये सब टाइम मैनेजमेंट में आता है। और ट्राई टू क्लब टू थिंग्स टुगेदर, अगर मार्केट जा रहे तो वहां पर कौन कौन सी चीजें जो एक साथ की जाए, रास्ते में ये हो रहा है वहां पे वो कर लेंगे, मतलब एक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर जितनी रिलेटेड बातें हैं वो सब करके जाना। शांतिवन जाना है, जो कुछ करना है एक साथ सोच के जाना, इससे ये करना है वो करना है, नहीं तो एक से मिल के आएंगे, ऊपर आने के बाद पता चलेगा वो तो लेना रह गया, ये तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। जगह पर जाने के बाद रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड सब कुछ करना, वो है टाइम मैनेजमेंट। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनानी है, मेरा टाइम वेस्ट करने वाले कौन कौन है, वो व्यक्ति, वस्तु या और कुछ, या डिजिटल नगरी में एक बार घुस गए तो डिजिटल नगरी की अनजान गलियों में भटकते भटकते कहां चले जाते पता ही नहीं चलता है, वापस ही नहीं आ पाते। टाइम वेस्टर्स कौन है? फिर मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में आता है फूड मैनेजमेंट, कितना टाइम दे रहे फूड के लिए। फिर आता है स्लीप मैनेजमेंट, नींद कितना कर रहे और किस रीति से कर रहे और कैसे कर रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। बाबा ने कहा समय को सफल करना है, एक मिनट भी तुम्हारा वेस्ट न जाए। दो तीन दिन पहले मूर्ति में था, कोई कोई बच्चे इतना आराम से, कितने बजे तक सोते हैं? 6 बजे तक, कम बोल दिया, कोई कोई 8 बजे तक सोने वाले भी है। आए बरबर पहले नाश्ता, मुरली बाद में। तो चार्ट देखना है, आईने में देखना है। हंसी की बात है, एक आदिवासी बस्ती में एक आदिवासी को एक बार एक आईना मिल गया। उसने आईना कभी देखा ही नहीं था, पहली बार उसको पता चला कि ये आईना है। आईने में देखा खुद का फोटो, आश्चर्य हो गया, ये है कौन? सोचा ये मेरा बाप होगा, स्वर्गवासी बाप। और वो अपने पिता के साथ बातें करने लगा, मुझे बहुत याद आती है आपकी। और जब पत्नी ने देखा कि कुछ तो दाल में काला है, ये किसकी तस्वीर देखते रहता है और किससे बात करते रहता है छुप छुप के आईने में, तो उसे भी नहीं पता आईना, उसने भी कभी आईना देखा नहीं। और वो एक दिन चुपके से देखती है, अच्छा अब समझ में आया, ये है बात, दाल में कुछ काला है तो मुझे पहले से पता था पर अब सबूत मिल गया, ये है वो। और वो अपनी सास को दिखाती है, देखो अपने बेटे की करतूत। और वो सास देखती है, अच्छा ये है, पर वो कहती चिंता मत करो, ये बूढ़ी ज्यादा समय नहीं जिएगी। क्या करना है? आईने में देखना है। किसको देखना है? खुद को। तो आईना भी ठीक ठीक हो। तो ये चार चीजों की बाबा ने कहा चेकिंग करो। गोल्डन चांस है, सिल्वर चांस नहीं लेना है। उसके बाद ग्रुप से मुलाकात की है, लंदन ग्रुप, वो वाला जो था वो काठमांडू ग्रुप था जिसके बारे में हमने उड़ने की बात चुकी। लंदन वाले ग्रुप से क्या कहा बाबा ने, कहां बंधे हो सभी? स्नेह के सूत्र में। और ये माला बाप के गले की माला है, एक एक विशेष है, बाप एक एक को राजी करता है, एक सेकंड में राजी करता है। और एक एक जो मणका है वो एक बाप दूसरा न कोई और एक की लगन में समाया हुआ है और इसीलिए कैसा है, निर्विघ्न है। निर्विघ्न बनने की विधि विघ्नों से लड़ना नहीं है, निर्विघ्न बनने की विधि है बाप की याद में खो जाना, प्यार में समा जाना। कैसी युक्ति है, विघ्नों के साथ कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, करना कुछ और है। याद में खो जाओ, अपने चार्ट को बढ़ा दो, बाबा से संपर्क, बाबा से कनेक्शन, बाबा से योग, बातें, रूरियान, शुक्रिया, जुड़े रहना। विघ्न आ जाए तो विघ्नों को छोड़ो और तपस्या में लग जाना। और आत्माएं एग्जैक्टली अपोजिट करती है, जब विघ्न आता है तो सबसे पहला अमृत वेला छूटता है और मुरली छूटती है और विघ्न के बारे में चिंतन करते हैं इसको कैसे ठीक करें, जबकि विधि कुछ और है। और बाबा ने कहा कैसे आए हो यहां, उड़कर, शरीर को उड़ने का अभ्यास है, अब आत्माओं को, आत्मा को उड़ाओ। और दादी से कहा धारणा स्वरूप बनकर उड़ो और उड़ाओ। कैसे उड़ाओ, पहले धारणा की शक्ति स्वयं में धारण करो, भाषण करने से कुछ नहीं होगा, केवल जो हम सीख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जब तक हम उसके स्वरूप नहीं, उस बोलने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो हम स्वयं कर रहे हैं, स्वयं अंदर ब्रह्मचर्य कूट कूट कर भरा है, तभी उस पवित्रता का असर होगा, नहीं तो कितने भी भाषण दो पवित्रता के कोई असर नहीं। आत्मा में क्या चल रहा है, 24 घंटे यहां से कुछ ना कुछ निकलते रह रहा है, प्रकंपन, सो रहे तब भी, कमरे में अकेले है तब भी, सेवा केंद्र पर है तब भी, मधुबन में है तब भी, तपस्या का सोच रहे तब भी, टाइम टेबल बना रहे तब भी, किसी से बात कर रहे तब भी, 2400 घंटे निकल रहा है कुछ ना कुछ। वो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व है, क्या उसमें से निकल रहा है, प्यूरिटी है क्या है। बाबा ने एक और उदाहरण दिया, जैसे वो सूर्य किरणें फैलाता है, तुम हो मास्टर रचता, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम हो विधाता वरदाता, तुम हो भाग्यवान, तुम भी क्या करो, प्राप्तियों की किरणें फैलाओ। कितना अच्छा उदाहरण दिया, तुम सूरज हो, किरणें फैलाओ। तो मगन हो जाना, तो बाप बच्चों में बिजी है, बच्चे बाप में बिजी है, इसके बच्चे बाप का बिजनेस ही बच्चे है। लंदन ग्रुप से मुलाकात, काठमांडू ग्रुप से मुलाकात, दादी जा रहे हैं और दादी को 3 बातें कही बाबा ने, एक तो संदेश देना, कौन सा, उड़ना और उड़ाने का, दूसरा स्मृति, याद और सेवा साथ साथ चलते रहे, और तीसरा विशेषता। कौन सी विशेषता है सब में, जब भी जहां पे भी सेवा हो तुरंत पहुंच जाना, अपने स्पिरिचुअल कारण नहीं देना है सेवा में, जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ गौन है। ये नहीं कहना मुझे क्लास सुनने जाना है और मुझे मुरली पढ़ना है और मुझे मुरली क्लास जाना है, या नीचे बाबा आ रहे हैं तो बाबा को मिलने जाना है, जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ एक तरफ, सेवा सर्वप्रथम। नहीं तो लोग उदास हो जाते, ये सब लोग बाबा से मिलने नीचे जा रहे और हम यहां सेवा कर रहे बैठ रहे, इसलिए आए थे क्या, यहां मार्क्स ज्यादा है, भाग्य ज्यादा है, दादी की क्लास चल रही है और हम यहां डिपार्टमेंट में बैठे, वहां इतनी अच्छी क्लास चल रही है और हमको इसी टाइम पे सेवा दी गई, इसी में भाग्य है। जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ कौन है, कर्तव्य सर्वोपरि। तो काठमांडू ग्रुप से मुलाकात, लंदन ग्रुप से मुलाकात, याद प्यार, और एक लास्ट में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है जाते समय, अविनाशी उन्नति होती रहे। दोनों ग्रुप से मिल रहे एक साथ, क्या कहा, एक एक अविनाशी रतन है, और उसी पे एक जगह कहा क्या होती रहे, तुम्हारी अविनाशी उन्नति होती रहे, निरंतर ऐसे नहीं कल आगे थे आज पीछे है, एक कदम आगे दो कदम पीछे, दो कदम आगे चार कदम पीछे, 10 साल में वहीं खड़े हैं जहां 10 साल पहले थे, जरा भी उन्नति नहीं हुई है। प्यूरिटी की स्टेज वही है, स्थिति की स्टेज वही है, अभी भी वही रोना धोना छुईमुई अवस्था, अभी इमोशनल कंट्रोल, अभी भी इमोशनल बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है, कभी भी आंसू, कभी भी रूठना रूसना मनाना, यही चालू है, आगे बढ़ते जाना है। तो संगम युग है तन मन धन, समय को सफल करने का युग। ऐसे कैसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे सहयोगी आत्माओं को, ऐसे स्नेही आत्माओं को, ऐसे लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक ही श्रेष्ठ संकल्प रखने वाली आत्माओं को, ऐसे एक ही इच्छा रखने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, ऐसे तन को सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे मन में शक्तिशाली संकल्प, मन को शांत, मन को स्थिर, ऐसे मन में शुभ भावना शुभ कामना रखकर मन को सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे धन को यज्ञ में लगाकर धन को सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन में आने वाली आत्माओं को, वन 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 में आने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन में आने वाली आत्माओं को भी, ऐसे हाँ ऐसे दाता विदाता वरदाता भाग्यवान रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा उड़ते रहने वाली आत्माओं को, धरती का आकर्षण जिनको कम है, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसी सिकिलदी आत्माओं को, ऐसे सालिम बुद्धि आत्माओं को, ऐसे उन्नति की सीढ़ी चढ़ने वाली, विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी और विघ्नों को अनुभव की उन्नति समझने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति को अच्छा समझने वाली आत्माओं को, लास्ट में था प्रकृति जीत बनने वाली आत्माओं को, माया जीत बनने वाली आत्माओं को, ऐसे अविनाशी अविनाशी रत्नों को, ऐसी अविनाशी उन्नति को पाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे बाप के गले के हार का मन का बनने वाली आत्माओं को, ऐसे लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा न कोई आत्माओं को, ऐसे अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मास्टर सूर्य बनकर किरणें फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ चारों चीजें एक साथ सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे एक का पदम पाने वाली आत्माओं को, ऐसे गोल्डन चांस लेने वाली आत्माओं को, ऐसे अगर ब्राह्मण जीवन में बाबा ने क्या क्या कहा, अगर संपूर्ण नहीं लिया तो क्या लिया, महत्व को जानना ही महान बनना, ऐसे महत्व को जानकर महान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को, ऐसे संगम युग के महत्व को जान महान बनने वाली आत्माओं को, और ऐसे हाँ उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, और ऐसे तो ऐसे ढेर सारे समान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे और तन मन धन समय सब कुछ उसको समर्पित कर रहे हैं, ऐसा मन में शक्तिशाली संकल्प करेंगे। ओम शांति।